Hello students, in this episode we'll be reading chapters from the book Flamingo, which is a textbook for class 12th core course. Before clicking on the chapter, I would like to remind you that you have to open your books and read chapters with me. This podcast is just to give you a helping hand in reading. So click on the chapter you want to read with me. Best wishes. In this segment, we are reading Chapter 5, Indigo. Let's read about the author. Louis Fisher was born in Philadelphia. He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920. Fisher made a career as a journalist and wrote for the New York Times, the Saturday Review, and for European and Asian publications. He was also a member of the faculty of Princeton University. The following is an excerpt from his book, The Life of Mahatma Gandhi. उन्होंने जो किताब लिखी थी The Life of Mahatma Gandhi, which was a biography, उसमें से एक portion Indigo है. The book has been reviewed as one of the best books ever written on Gandhi by Times Educational Supplement. Now let's move to the chapter. Louis Fisher बताते हैं कि जब वो गांधी से मिलने के लिए 1942 में उनके आश्रम में गए तो गांधी ने उनको बताया कि वो बताएंगे किस तरह से गांधी के मन में ये आया कि ब्रिटिशर्स को अब इंडिया छोड़कर जाना चाहिए. एंड इट वॉज इन 1917. व्हेन आई फर्स्ट विजिटेड गांधी इन 1942 एट हिज आश्रम इन सेवाग्राम इन सेंट्रल इंडिया ही सेड गांधी सेड आई विल टेल यू हाउ इट हैपन्ड दैट आई डिसाइडेड टू अर्ज द डिपार्चर ऑफ द ब्रिटिश इट वॉज इन 1917. He had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow. There were 2,301 delegates and many visitors. 1916 mein annual convention mein wo gaye hue the. Bahut sare delegates aaye hue the, visitors aaye hue the. During the proceedings, Gandhi recounted, a peasant came up to me, looking like any other peasant in India, poor and emaciated. And said, I am Rajkumar Shukla. गांधी ने बताया कि उनके पास एक peasant आया who was thin looking peasant, जो कि किसी भी दूसरे Indian peasant की तरह था. Peasant यानी farmer, किसान. और उसने कहा, मेरा नाम राजकुमार शुक्ला है. I am from Champaran and I want you to come to my district. Gandhi had never heard of this place. The place, it was in the foothills of the towering Himalayas, near the kingdom of Nepal. अब आपको ये पता चल गया कि गांधी को नहीं पता था कि चंपारण कहाँ पर है. उन्होंने कभी नहीं सुना था इसके बारे में. लेकिन ये कहाँ पर है? In the foothills of the towering Himalayas, near the kingdom of Nepal. Under an ancient arrangement, the Champaran peasants were sharecroppers. Rajkumar Shukla was one of them. He was illiterate but resolute. Resolute means determined. पक्का, दृढ़ निश्चयी था वो. अनपढ़ था, इलिटरेट था, बट रेजोल्यूट यानी कि डिटरमिंड था. ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी. वो चाहते थे कांग्रेस सेशन में आए थे कंप्लेन करने के लिए कि उन लोगों के साथ बिहार में इनजस्टिस हो रही है और किसी ने कहा कि जाओ गांधी से बात करो. गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वॉज ऑल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. गांधी ने कहा कि उन्हें कानपुर जाना है और भी जगह पर जाना है. शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर. शुक्ला उनके साथ सब जगह गए. देन गांधी रिटर्न्ड टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद. शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम. ही वॉज सो डिटर्मिंड. अभी अभी आपने पढ़ा था ये वर्ड. ही वॉज सो डिटर्मिंड कि वो गांधी को फॉलो करते रहे. फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड. क्योंकि वो गांधी को अपने डिस्ट्रिक्ट चंपारण में लाना चाहते थे, इसलिए वो गांधी का पीछा नहीं छोड़ रहे थे. तो फाइनली उसने, राजकुमार शुक्ला ने गांधी से कहा, फिक्स अ डेट, ही बेग्ड. Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. Come and meet me and take me from there. Gandhi जो थे वो बहुत ही ज़्यादा impressed हो गए sharecropper की determination से, tenacity से. अभी हमने पढ़ा था, ही वॉज रेजोल्यूट. तो टेनेसिटी इज़ ऑल्सो अबाउट डिटर्मिनेशन. तो उन्होंने कहा कि मुझे कलकत्ता आना है फलां फलां डेट को, कम एंड मीट मी और मुझे वहाँ से ले जाओ. मंथ्स पास्ट. शुक्ला वॉज सिटिंग ऑन हिज हंशेज एट द अपॉइंटमेंट स्टॉप स्पॉट इन कलकत्ता व्हेन गांधी अराइव्ड. ही वॉज वेटिंग फॉर हिम. गांधी के लिए वेट कर रहे थे. ही वेटेड टिल गांधी वॉज फ्री. देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. दोनों ट्रेन में बैठ गए बिहार के लिए. देर शुक्ला लेड हिम टू द हाउस ऑफ अ लॉयर. एक लॉयर के घर ले गए शुक्ला उनको, नेम्ड राजेंद्र प्रसाद, हु लेटर बिकेम प्रेजिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया. राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला वॉज अ पुअर यो मैन. यस, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पुअर यो मैन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स. राजेंद्र प्रसाद तो घर में नहीं थे, तो लेकिन उनके सर्वेंट्स को पता था कि ये जो शुक्ला है इज़ अ पुअर फार्मर कह लो, ऑफिशियल कह लो, या ही इज़ अ पुअर पर्सन, इधर से उधर घूमता रहता है, जो कि राजेंद्र प्रसाद को बार बार परेशान करता है इस काम के लिए, शेयर क्रॉपिंग में हेल्प करने के लिए. सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड्स विद हिज कंपेनियन गांधी. अब उनके साथ तो गांधी आए थे जिनको वो जानते नहीं थे. गांधी को भी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट. उन्होंने सोचा कि ये भी कोई दूसरा पीजेंट है. बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूट द एंटायर सोर्स. गांधी और राजकुमार शुक्ला को ज़मीन पर बिठाया गया और गांधी को अलाउ नहीं किया गया कुएं से पानी लेने के लिए, क्योंकि उनको लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि उनसे पानी गिर जाए और सारा का सारा सोर्स गंदा हो जाए. हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल. अनटचेबल छुआछूत ये सब बातें होती हैं ना, तो उन सर्वेंट्स को क्या पता कि गांधी अनटचेबल नहीं है. गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण. तो उन्होंने कहा कि पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे और क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है उसके बाद हम चंपारण जाएंगे. टू ऑब्टेन मोर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट कंडीशंस दैन शुक्ला वॉज केपेबल ऑफ इम्पार्टिंग. गांधी चाहते थे कि शुक्ला ने जो इन्फॉर्मेशन उनको दी है उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठे कर लूँ. तो उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा प्रोफेसर जे बी कृपलानी को, जो कि आर्ट्स कॉलेज ऑफ मुजफ्फरपुर में टीचर थे. Whom he had seen at Tagore's शांति निकेतन स्कूल, जिनको उन्होंने टैगोर के शांति निकेतन स्कूल में देखा था. The train arrived at midnight, 15 April 1917. Kriplani was waiting at the station with a large body of students. Kriplani बहुत सारे students को लेकर आए थे. Gandhi stayed there for 2 days in the home of Professor Malkhani, a teacher in a government school. It was an extraordinary thing in those days, Gandhi commented. Gandhi ne kaha ki ye to ek badi hi extraordinary yani special baat ho gayi for a government professor to harbor a man like me. Ki unhone ek government professor ne mere jaise aadmi ko harbor kiya, yani ki rehne ki jagah di. Kyunki jo government servants the, they were not allowed to help people like Gandhi jo ki sarkar ke khilaf ladai lad rahe the. In smaller localities, the Indians were afraid to show sympathy for advocates for home rule. क्योंकि ये होम रूल के लिए लड़ रहे थे और एडवोकेट थे, तो छोटी छोटी जगहों पर लोग इनके लिए सिंपैथी नहीं दिखा सकते थे, पर उन्होंने दिखाई द गवर्नमेंट स्कूल टीचर मिस्टर प्रोफेसर मलखानी ने. द न्यूज़ ऑफ गांधीज एडवेंट, अंडरलाइन दिस वर्ड, एडवेंट का मतलब होता है अराइवल, एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली. ये खबर बड़ी तेज़ी से फैल गई थ्रू मुजफ्फरपुर एंड टू चंपारण, दोनों जगह पर. शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम चंपारण बिगेन अराइविंग ऑन फुट एंड बाय कन्वेंस टू सी देयर चैम्पियन. लोग आने लगे उनको देखने के लिए. मुजफ्फरपुर लॉयर्स कॉल्ड ऑन गांधी टू ब्रीफ हिम. अब यहाँ पर कॉल्ड ऑन का मतलब है कि पेइंग अ विजिट टू समवन, यानी कि मुजफ्फरपुर लॉयर्स पेड विजिट टू गांधी टू ब्रीफ हिम, उनको बताने के लिए आने लगे. They frequently represented peasant groups in court. वो लोग क्योंकि represent करते थे peasant groups को, दे टोल्ड हिम अबाउट देयर केसेस, अपने केसेस के बारे में बताया, एंड रिपोर्टेड द साइज ऑफ देयर फी, ये भी बताया कि वो कितनी फीस लेते हैं। अब गांधी को ये बात बुरी लगी कि शेयर क्रॉपर्स आर ऑलरेडी पुअर और उनसे इतनी बड़ी बड़ी फीस कलेक्ट की जाती है। सो गांधी चिडिड द लॉयर्स, और वी कैन से गांधी स्कॉल्डेड द लॉयर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। ही सेड, आई हैव कम टू द कंक्लूजन दैट वी शुड स्टॉप गोइंग टू लॉ कोर्ट्स, टेकिंग सच केसेस टू द कोर्ट्स डज लिटिल गुड। क्योंकि गांधी को लगता था कि जो पीजेंट्स हैं दे आर सो क्रश्ड एंड फियर स्ट्रिकन, हमेशा वो डरे रहते हैं और उन लोगों को क्रश किया जा रहा है बाय द पीपल, पावरफुल पीपल एंड द लॉ कोर्ट्स। द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। इस लाइन को तो अंडरलाइन कर लो, द रियल रिलीफ फॉर देम इज टू बी फ्री फ्रॉम फियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants. अब आपको ध्यान से समझना है सिस्टम कि ज़्यादातर जो arable land थी चंपारण में, जो खेती की ज़मीन थी, that was divided into large estates, जिनके मालिक कौन थे? Englishmen थे, और उस पर काम करते थे Indian tenants। और चंपारण की chief commercial crop क्या थी? इंडिगो थी, यानी कि वहाँ पर मेन जो क्रॉप बेचने के लिए पैदा की जाती थी वो इंडिगो थी। जो लैंडलॉर्ड्स यानी कि जो इंग्लिश मैन थे, वो कंपेल करते थे अपने टेनेंट्स को कि अपनी ज़मीन पर, जो ज़मीन उनको दी गई है, उसके 3/20 पार्ट पर या फिर 15% ज़मीन पर इंडिगो ही उगाएंगे, और जितनी भी इंडिगो उगेगी वो सरेंडर कर देंगे द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। ये जो सिस्टम था ये बहुत पुराना था। दिस वॉज डन बाय लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो। अभी अभी उनको पता चला कि जो जर्मनी है उसने सिंथेटिक इंडिगो बना ली है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement. अब वो ये कह रहे थे कि जो 15% वाला अरेंजमेंट है कि तुम 15% हमें दोगे अपनी क्रॉप को, अपनी क्रॉप के 15 जो इंडिगो है वो, जो कि तुम 15% ज़मीन पर उगा रहे हो, वो सारी हमें दोगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अब क्योंकि हम इस तुम्हें इस अग्रीमेंट से आज़ाद कर रहे हैं तो इसके लिए कंपनसेशन दो हमें, विच वॉज एक्चुअली रॉन्ग। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज इक्सम, इक्सम यानी इरिटेट करने वाला टू द पीजेंट था, उनको इरिटेट कर रहा था क्योंकि क्यों दे वो पैसे। एंड मैनी साइंड विलिंगली, लेकिन फिर भी कुछ ने तो साइन कर दिया, उनको पता ही है कि भाई जो वो कह रहे हैं इंग्लिशमैन हमें वो करना ही है। अब देखो, those who resisted, जिन्होंने resist किया, engaged lawyers को engage किया, the landlords hired thugs, तो क्या किया, कुछ ने peasants ने lawyers को hire किया, तो landlords ने thugs यानी कि गुंडे बदमाशों को hire कर लिया। meanwhile the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। अब बेचारे वो जिन्होंने साइन कर दिए थे उनको पता चला सिंथेटिक इंडिगो के बारे में, तो उनको लगा हमने तो बेकार में ही साइन कर दिए, अब वो भी अपने पैसे लेना वापस चाहते थे। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण, और गांधी ने जो काम किया दैट वाज प्लान्ड। सबसे पहले ही बिगेन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स, उन्होंने फैक्ट्स इकट्ठे किए, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन, सेक्रेटरी से मिलने गए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे वुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर, लेकिन जो सेक्रेटरी था उन्होंने कहा कि गांधी यू आर एन आउटसाइडर, हम तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। गांधी आंसर्ड दैट ही वॉज नो आउटसाइडर, कि मैं कोई आउटसाइडर नहीं हूँ, ये पहली बात। अब दूसरी बात देखो, नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुत डिवीजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। देखो फिर से कॉल्ड ऑन आ गया, गांधी कॉल्ड ऑन यानी गांधी विजिटेड। पहले जो हमने पढ़ा था उसमें था द लॉयर्स कॉल्ड ऑन
यानी कि लॉयर्स विजिटेड। अब गांधी बताते हैं, द कमिश्नर प्रोसीडेड टू बुली मी, सबसे पहले उन्होंने मुझे बुली किया, मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, एंड एडवाइज्ड मी फोर्थ विद टू लीव तिरहुत, उन्होंने मुझे कहा कि अभी तिरहुत छोड़कर चले जाओ। ये दूसरी बात। नाउ द थर्ड वन, गांधी डिड नॉट लीव, उन्होंने कहा चले जाओ तो गांधी चले नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण, वो चले गए मोतिहारी में जो कि कैपिटल ऑफ चंपारण है। सेवरल लॉयर्स अकम्पनीड हिम एट द रेलवे स्टेशन, अ वास्ट मल्टीट्यूड ग्रीटेड गांधी, ही वेंट टू द हाउस टू अ हाउस एंड यूजिंग इट एज हेडक्वार्टर्स कॉन्टिन्यूड हिज इन्वेस्टिगेशंस। बहुत सारे लॉयर्स गांधी के साथ गए और उन्होंने अपना हेडक्वार्टर एक घर में बना लिया और वहाँ से इन्वेस्टिगेशंस शुरू कर दी। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन माल्ट्रीटेड इन अ विलेज नियर बाय, कि किसी पीजेंट के साथ माल्ट्रीटमेंट हुआ है, यानी कि खराब बर्ताव हुआ है। गांधी डिसाइडेड टू गो एंड सी, द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट, हाथी की पीठ पे सवार होके वो चल दिए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town. अभी वो ज़्यादा दूर नहीं गए थे कि उनके पास एक सुपरिटेंडेंट का मैसेंजर यानी कि एक दूत आया बताने के लिए। ओवरटुक का मतलब कि उनका रास्ता रोक लिया, आगे आ गया उनसे और उसने कहा कि वापस चले जाओ टाउन इन हिज कैरेज, इसी में जिस गाड़ी में आए हो उसी में वापस चले जाओ। गांधी कंपाइल्ड, यानी कि उन्होंने ये सारी बातें बताई, इकट्ठी करी। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। ये मैसेंजर उनको ले गया, घर ले गया और वहाँ पर ऑफिशियल नोटिस दिया कि अभी यू हैव टू क्विट चंपारण, अभी इमीडिएटली। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस, उन्होंने साइन कर दिए कि मिल गया मुझे ये नोटिस, एंड रोट ऑन इट, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर लिख दिया दैट आई वुड डिस ओबे द ऑर्डर, मैं ये ऑर्डर नहीं मानूंगा, जिसका मतलब है कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स टू रीअपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे, सॉरी रीअपियर नहीं अपियर। अब इसके बदले में क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने डिस ओबे करने के लिए कह दिया तो गांधी को समन्स मिले, यानी कि एक कोर्ट का नोटिस मिला कि भाई आओ कोर्ट में, अपियर हो जाओ। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, पूरी रात जगे रहे, बिकॉज ही वॉज प्लानिंग। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ लिखा कि बिहार से आ जाओ यहाँ पर विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स, यानी कुछ खास लोगों को लेकर जिनकी चलती हो, ऐसे लोगों को लेकर आ जाओ। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम, आश्रम में इंस्ट्रक्शंस भेजी कि जो भी होना है जैसे भी होना है। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वायसरॉय, और उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट वायसरॉय को भेजी। क्यों उन्होंने वायर की रिपोर्ट, लेटर क्यों नहीं भेजी, क्योंकि हो सकता है कि लेटर रास्ते में कहीं खो जाती। ही वॉन्टेड टू हैव सम प्रूफ। नेक्स्ट पैराग्राफ, मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, यानी कि ब्लैक विद पीजेंट्स यानी कि भरा हुआ था। Many people came from all over Champaran. They did not know Gandhi's record in South Africa. उनको नहीं पता था कि वो साउथ अफ्रीका में क्या करते थे। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. इतने सारे लोग इसलिए आ गए क्योंकि उनको बस ये पता था कि एक महात्मा है जो उनको हेल्प करने आया है और उसको अथॉरिटीज से कुछ प्रॉब्लम है। Their spontaneous demonstration in thousands अराउंड द कोर्ट हाउस वॉज द बिगिनिंग ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश। अब देखो, ये लोग तो बहुत डरते थे ब्रिटिशर्स से, लैंडलॉर्ड से, लेकिन गांधी को जब उन्होंने परेशानी में देखा, सो देन दे केम फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ चंपारण, तो ये बिगिनिंग थी उनकी अपने डर के ऊपर जीत हासिल करने की। जब हम बात करते हैं ओवरकमिंग फियर, तो ये एक मेन टॉपिक है आपके 12th क्लास में, जो कि दो चैप्टर्स में मेंशन किया गया है। एक तो ये इंडिगो में आपने देख लिया, ओवरकमिंग फियर पीजेंट्स के या शेयर क्रॉपर्स के केस में, और दूसरा आपकी जो स्टोरी है डीप वाटर, जिसमें डगलस ओवरकम करता है अपने फियर को फ्रॉम वाटर, उसको पानी से डर होता है और वो उसको ओवरकम करता है. सो फियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर क्वेश्चंस, और वी कैन से ओवरकमिंग फियर. या इस तरह से आ जाता है, व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू ओवरकम फियर. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. अब अगर गांधी कोऑपरेट नहीं करेंगे तो ऑफिशियल्स आर पावरलेस. ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. लेकिन गांधी जो थे वो लड़कर नहीं बढ़ते थे, वो शांति से बढ़ते थे, तो उन्होंने इस क्राउड को रेगुलेट करने में मदद की. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. लड़ नहीं रहे थे, ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली. ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. हिदरटू मीन्स अभी तक. Until now, बहुत सारी बातें ऐसी हैं that could be challenged by Indians. अब ये बात सुनकर the government was baffled, घबरा गई, परेशान हो गई. The prosecutor requested the judge to postpone the trial. Apparently, the authorities wished to consult their supporters, superiors. अब ये जो authorities थी, ये खुद से कोई decision नहीं लेना चाहती थी, ये अपने superiors से consult करना चाहती थी. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. वो गांधी नहीं चाहते थे कि देर हो. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लेडिंग गिल्टी. ही वॉज इन्वॉल्व्ड. ही टोल्ड द कोर्ट इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम. अब ये जो कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी वाली बात है, ये भी एक अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2023 में ये आपके पेपर में आया था. अब गांधी जो हैं वो असमंजस में हैं, कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ हैं उनके पास. एक तो ऑन द वन हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर, वो खुद एक लॉयर हैं और एक लॉ ब्रेकर नहीं बनना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड वो चाहते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस देना चाहते हैं टू द पीपल ऑफ चंपारण. यानी कि अथॉरिटीज़ से लड़ना भी है सही काम के लिए, लेकिन कोई कानून भी नहीं तोड़ना. दिस वॉज द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़. अब वो ऑलरेडी कुछ काम ऐसे कर चुके थे. शायद रिकॉर्डिंग में एक ब्रेक आ गया है. अब ये जो गांधी थे, ये ऑलरेडी कुछ काम ऐसे कर चुके थे. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव. उन्होंने जो ऑर्डर था जाने का यहाँ से, उसको डिसरिगार्ड किया था. नॉट फॉर द वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बीइंग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस. ये उन्होंने रिस्पेक्ट के लिए नहीं किया था, बल्कि अपनी कॉन्शियंस को सेटिस्फाई करने के लिए किया था कि जो बड़ा काम वो करने के लिए आए हैं वो काम वो कर सकें. ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू. तो उन्होंने पूछ लिया कि मेरे लिए क्या पेनल्टी है, दे दो. सो वील रीड, यहीं तक पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेगमेंट में इसके आगे का चैप्टर पढ़ेंगे. सो टिल नाउ वी नो दैट गांधी हैड कम टू चंपारण ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला टू हेल्प द शेयर क्रॉपर्स. यहाँ आकर उन्हें कुछ सिचुएशंस पता चली, उन्होंने कुछ डिसोबे किया चीज़ों को, कुछ लॉयर्स से बात की, और नाउ ही इज़ रेडी टू सर्व द पीपल ऑफ चंपारण. वेलकम बैक अगेन. लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर इंडिगो. अब तक के चैप्टर में हमें ये पता चल चुका है कि गांधी हैज़ अक्वायर्ड अ रिमार्केबल पोजीशन एट चंपारण एंड द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन. वी ऑल्सो नो दैट गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. Gandhi has talked about his conflict of duties in the court and he has also told them he had also asked them the penalty due. Now let's continue. The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. Can you see here how helpless the government was? मैजिस्ट्रेट सेंटेंस नहीं सुनाना चाहते हैं. उन्होंने 2 घंटे का टाइम मांगा. गांधी को कहा कि इस 2 घंटे के लिए बेल दो. गांधी ने कहा मैं नहीं दूंगा. तो जज ने उनको विदाउट बेल ही रिलीज़ कर दिया. दैट वॉज़ अ ग्रेट सक्सेस ऑन गांधीज़ पार्ट. अब 2 घंटे के बाद वेन द कोर्ट रिकन्वेंस्ड, रिकन्वेंस्ड मीन्स ब्रॉट टुगेदर, वेन द कोर्ट रिकन्वेंस्ड द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीन वाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी. यानी द थिंग्स आर हैपनिंग एज पर गांधीज विल एंड गांधी इज एट अ विन विन सिचुएशन. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, खास लॉयर्स, हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार. दे कन्फर्ड विद गांधी, गांधी के साथ उन्होंने डिस्कशन किया. फॉर वॉट शुड दे डू इफ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, उन लोगों के सामने ये क्वेश्चन था, अगर गांधी को जेल हो गई तो वो लोग क्या करेंगे. गांधी ने पूछा उनसे. Why the senior lawyer replied, senior lawyer ने जवाब दिया, they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अब जो lawyers हैं they are not emotionally attached with the court. उन्होंने कहा कि वो लोग तो गांधी को advise करने आए हैं और अगर गांधी जेल चले जाएंगे तो there would be no use of them, इसलिए वो लोग घर वापस चले जाएंगे. लेकिन गांधी को उनका ये जवाब अच्छा नहीं लगा. What about the justice to the sharecroppers? Gandhi demanded. अब गांधी ने कहा कि जिस काम के लिए वो इतनी दूर अहमदाबाद से आए हैं वो काम यानी कि जस्टिस टू द sharecroppers, वो तो उसका तो कुछ हुआ ही नहीं. The lawyers withdrew to consult. राजेंद्र प्रसाद has recorded the upshot of their consultations. अब ये लोग सब आपस में कंसल्ट करने लगे एक दूसरे को और राजेंद्र प्रसाद ने उन सब का एक रिकॉर्ड रखा, उनके कम्युनिकेशन का, कन्वर्सेशन का. दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स. उन्होंने सोचा कि गांधी जो हैं ही इज़ अ टोटली स्ट्रेंजर एंड ही इज़ प्रिपेयर टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पीजेंट्स. इफ दे ऑन द अदर हैंड बींग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. तो उन लॉयर्स को ये लगा कि अगर वो गांधी तो जेल जाने को तैयार हैं और वो लोग वहाँ के होकर भी, उन लोगों के लॉयर्स होने के बावजूद भी अगर वो उनको छोड़कर चले जाते हैं तो that would be a shameful desertion. यानी कि उनकी जो लीविंग होगी वहाँ से वो शेमफुल होगी, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. The battle of Champaran is won. अब जब वो लोग गांधी के साथ जेल जाने को तैयार हैं तो लड़ाई तो ऑलमोस्ट जीती जा चुकी है. He exclaimed, गांधी ने कहा. Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. गांधी ने फटाफट एक पेपर लिया, एक प्लान बना लिया कि कौन सा ग्रुप पहले जाएगा, कौन सा पेयर पहले जाएगा अरेस्ट के लिए. सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मैजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड. सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन द मॉडर्न इंडिया. गांधी का इतना इम्पैक्ट हो गया है उस जगह पे कि कुछ दिनों के बाद गांधी को एक लेटर मिला मैजिस्ट्रेट से कि उन्होंने कहा कि वो इस केस को ड्रॉप कर देना चाहते हैं, यानी कि ख़त्म कर देना चाहते हैं. गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स. अब गांधी और लॉयर्स जो हैं वो थोड़े ज़्यादा उनको पावर आ गई है और दे आर इन टू द राइट पाथ, तो उन्होंने सोचा कि हमें एक इंक्वायरी करनी चाहिए कि फार्मर्स को क्या क्या ग्रीवेंसेज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या शिकायतें हैं. अब देखो, जैसे ही गांधी ने ये सोचा, गांधी और लॉयर्स ने, डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन. इतने सारे पीजेंट्स ने, 10,000 ने अपनी प्रॉब्लम्स लिख दी. एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस. डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड. इतने सारे काम होने लगे. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. अब क्योंकि अब जो शेयर क्रॉपर्स हैं वो अपने ग्रीवेंसेस लिख रहे हैं तो जो लैंडलॉर्ड्स हैं वो फोर्सफुली उनको प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इन जून गांधी वॉज समन टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर. बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid details plans for civil disobedience if he should not return. Sir Edward Gate ने गांधी को एक समन किया, यानी कि एक लीगल नोटिस भेजा मिलने के लिए। तो गांधी प्लेड वेरी स्मार्ट, उन्होंने उनसे मिलने से पहले अपने लीडिंग एसोसिएट से वो मिले और उनको अपने प्लान्स बताए, और उन्होंने कहा कि अगर मैं वापस ना आऊँ, यानी कि अगर मुझे जेल हो जाए, तो सिविल डिसोबीडियंस को के जो प्लान्स उन्होंने बताए हैं उनको शुरू कर दिया जाए। गांधी जब उनके पास गए, गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़, longer than usual, protracted means ज़रूरत से ज़्यादा लंबे इंटरव्यूज़ उनके हुए विद द लेफ्टिनेंट गवर्नर, हु एज अ रिजल्ट अपॉइंटेड एन ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन टू द इंडिगो शेयर क्रॉपर्स सिचुएशन। उन्होंने फाइनली क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन बिठा दिया जिसमें इंक्वायरी की जाएगी शेयर क्रॉपर्स की सिचुएशन से रिलेटेड। तो शेयर क्रॉपर्स में देखो, जो अपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है, दैट इज़ आफ्टर एस अपोस्ट्रॉफी लगा हुआ है, जनरली ये एस के पहले होता है लेकिन यहाँ बाद में लगा हुआ है। डोंट फॉरगेट, अपने टीचर से ये ज़रूर पूछिए कि क्यों बाद में लगा हुआ है, और अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ, अब ये जो कमीशन बना इसमें कौन कौन था, कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी। इतने सारे लोग थे, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, और गांधी थे एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स, यानी शेयर क्रॉपर्स को, पीजेंट्स को वो अकेले ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। 7 महीने तो वो लगातार रहे अनइंटरप्टेड, बिना किसी रुकावट के, और उसके बाद शॉर्टर विजिट्स देते रहे। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली ऑन द एंट्रीटी ऑफ एन अनलेटर्ड पीजेंट इन द एक्सपेक्टेशन दैट इट वुड लास्ट अ फ्यू डेज ऑक्यूपाइड ऑलमोस्ट अ ईयर ऑफ गांधीज लाइफ। यानी कि ये जो राजकुमार शुक्ला की जो हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप मेरे गाँव में आ जाओ चंपारण में, एक बार हमारी सिचुएशन को देख लो, दैट हम्बल रिक्वेस्ट, दैट एंट्रीटी टुक गांधीज कम्प्लीट 1 year, 1 साल उनको उसी में लग गया। द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड अ क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स एंड वेन दे सॉ दिस दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। अब जब ये ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू हुई तो बहुत सारे एविडेंसेज अगेंस्ट द बिग प्लांटर्स जो थे उनके अगेंस्ट बहुत सारे एविडेंसेज मिल गए, और अब क्योंकि ये सब सही थे एज प्रिंसिपल्स एज रूल्स ये सही थे, तो उन्होंने वादा किया कि वो पीजेंट्स को रिफंड्स करेंगे। अब रिफंड करेंगे तो कितना, 100% तो होता नहीं है, तो कितना, हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी, उन्होंने गांधी से पूछा कितना देना होगा हमें। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान से सुनना। दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। जो लैंडलॉर्ड्स थे वो ये सोचते थे कि शायद गांधी 100% का डिमांड करेंगे कि सारा पैसा वापस करो जो तुमने इन लोगों का डिसीटफुली लिया है, लेकिन गांधी ही आस्क ओनली 50%। देयर ही सीम्ड एडमेंट, एडमेंट यानी फर्म, अपनी बात से डिगेंगे नहीं। देयर ही सीम्ड एडमेंट राइट्स रेवरेंड जे जेड हॉज, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, हु वॉज ऑब्जर्विंग द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। बड़े ध्यान से पूरे एपिसोड को वो ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि जो लैंडलॉर्ड्स थे देवर थिंकिंग कि गांधी 100% मांगेंगे, लेकिन गांधी ने 50% मांगा और वो उसमें एडमेंट थे। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। देखो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना। 100% वो सोच रहे थे, गांधी ने 50% मांगा। अब वही बार्गेनिंग हम लोग करते हैं ना, तो उन्होंने कहा, उन्होंने सोचा तो यही था कि गांधी एडमेंट रहेंगे, 50 किससे नीचे नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने फिर भी 25 ऑफर किया और गांधी इस बात को मान गए, जो कि बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम बताएंगे व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द पीजेंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सो आई रिपीट द क्वेश्चन। व्हाई डिड गांधी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द पीजेंट्स। ये आपके 23 में बोर्ड एग्जाम में आया भी है फॉर 2 marks। नाउ लिसन केयरफुली, दिस सेटलमेंट ऑफ 25%
वॉज अडॉप्टेड यूनैनिमसली बाय द कमीशन. म्यूचुअल इन लोगों का हो गया कि भाई हाँ ठीक है, सब लोग अग्री हैं 25% पे. गांधी एक्सप्लेन्ड, अब गांधी एक्सप्लेन करें क्यों वो 25% पे मान गए, अंडरलाइन करो इसको. गांधी एक्सप्लेन्ड दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट, अमाउंट इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, दैन द फैक्ट दैट द लैंडलॉर्ड्स हैड बीन ओब्लाइज्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ देयर मनी. बड़ी बात यह है कि इतने बड़े लैंडलॉर्ड्स झुक गए हैं और वो अपना जो अमाउंट है वो उसमें से कुछ पोर्शन देने के लिए तैयार हो गए हैं, एंड विद इट पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज, नॉट ओनली मनी बट ऑल्सो देयर प्रेस्टीज, इज्जत भी तो गई. देयरफॉर एज फॉर एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैज बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ. क्योंकि अभी तक तो वो तो कानून से भी ऊपर थे. नाउ द पीजेंट्स सॉ दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स. अब पीजेंट्स, ये भी अंडरलाइन करके रखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. पीजेंट्स को, शेयर क्रॉपर्स को, गरीब किसानों को ये समझ में आया कि उनके भी हक हैं जो कि आज तक नहीं थे, और उनके भी डिफेंडर्स हैं, यानी कि लोग हैं जो उनके बारे में सोचते हैं. ही लर्न्ड करेज, ये ही कौन है? पीजेंट्स, अ कॉमन पीजेंट, कोई भी हो सकता है ये. उसने सीखा, अब उसने, उसके अंदर करेज आ गई. तो एक बार रिपीट कर लेते हैं. मनी वॉज नॉट इम्पॉर्टेंट, द ब्रिटिश वर सरेंडरिंग देयर प्रेस्टीज, ये इम्पॉर्टेंट था. और जो था, गांधी चाहते थे कि जो डेडलॉक उन लोगों के बीच में बन गया है उसको ब्रेक डाउन करना था. तो दीज आर द 3 points दैट CBSE हैज़ प्रोवाइडेड इन द की. बाकी CBSE हमेशा ये कहता है कि 2 number के क्वेश्चन में आपको 1 या 2 points लिखने होते हैं, जिसमें, और ये 3 तो उन्होंने वैसे दिए क्योंकि ये 3 मेन हैं जो बुक में बताए गए हैं. उसके अलावा वो ये कहते हैं यू कैन राइट एनी अदर रेलेवेंट पॉइंट, ऐसा CBSE बताता है. अब जहाँ से ये सेगमेंट हमने शुरू किया था, गांधीज पोजीशन, यहाँ लिखा है इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन. अब हम सबको पता है कि गांधी की क्या पोजीशन हो गई है उस जगह पर. विद इन अ फ्यू ईयर्स ऑफ द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर एस्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स एंड इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड. धीरे धीरे वहाँ से इंडिगो शेयर क्रॉपिंग जो थी वो डिसअपियर हो गई. गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पोलिटिकल और इकोनॉमिक सोल्यूशंस, जो कि अब उन्होंने शुरू कर दिए थे. ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस. हमारे पास 4 बातें हैं, पोलिटिकल इशूज़, इकोनॉमिकल इशूज़, कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट. अब वो इन दोनों के लिए, यानी कल्चरल और सोशल इशूज़ के लिए भी चंपारण में कुछ करना चाहते थे इमीडिएटली. ही अपील्ड फॉर टीचर्स. महादेव देसाई एंड नरहरी पारिक, 2 young men who had just joined Gandhi as disciples and their wives, volunteered for the work. 4 लोगों ने volunteer किया. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. बहुत लोग आ गए. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. ये दोनों भी आ गए. Primary schools were opened at 6 villages. Primary schools were opened in 6 villages. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. अब देखिए, सिर्फ political और economical issues नहीं, यहाँ पर cultural और social issues पर भी काम होना शुरू हो गया. Health conditions were miserable. यहाँ पर बहुत ख़राब थी health conditions. Gandhi got a doctor to volunteer his services for 6 months. 3 medicines were available. उन लोगों के पास 3 ही medicines थी. Mark कीजिए, castor oil, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, यही 3 दवाइयाँ होती थी उनके पास. एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनिन प्लस कैस्टर ऑयल. एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. इन्हीं 3 को कॉम्बिनेशन बनाकर वो लोगों को डिफरेंट बीमारियों के लिए देते थे. गांधी noticed the filthy state of women's clothes. जो वुमेन थी उनके कपड़े बहुत ही गंदे होते थे, filthy. He asked कस्तूरबाई to talk to them about it. One woman took कस्तूरबाई into her hut and said, look, there is no box or cupboard here for clothes. उनके पास होता ही नहीं है कुछ भी. The sari I am wearing is the only one I have. यही है एक अकेली साड़ी मेरे पास जो मैंने पहन रखी है. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. अब उनका ध्यान आश्रम पर भी था, बेशक वो चंपारण में है. ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स. वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैटरन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड. गांधी का ध्यान सिर्फ चंपारण की तरफ नहीं है, उनका ध्यान अपने आश्रम की तरफ भी है. तो वो इस तरह के मैसेजेस भी भेजते थे. उनको ये ध्यान है कि हमने जो डिग्स डिग किए थे लैटरिन ट्रेंचेस, पहले ज़माने में ये लोग इसी तरीके से गुजारा करते थे, तो अब इनको ढक दो और नए वाले बना लो गड्ढे, ताकि क्योंकि वरना क्या होगा, पुराने वालों से स्मेल आने लगेगी. नाउ आई एम ऑन पेज नंबर 54 फ्रॉम माई बुक. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. It's again an important point. How is it an important turning point? What I did, he explained, was a very ordinary thing. Gandhi ne kabhi apne aap ko mahan nahi kaha. Unhone kaha ki I did a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. Ki bhai ye meri country hai aur British jo hain wo mujhe meri country mein aake mujhe order nahi kar sakte hain. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. Gandhi ka apna tarika hai, wo practical problems ko aur politics ko intertwine kar dete hain. His was only a loyalty to abstractions, a very important point. His was not a loyalty to abstractions. Abstractions ko loyal nahi hai wo. It was a loyalty to living human beings. Wo kehte hain ki he is not answerable to the rules and the rule makers. He is answerable to the human beings. Isliye wo human beings mein badlav lane ke liye kaam karte hain. You have to mark this line. I'm reading it again. His was not a loyalty to abstractions. It was a loyalty to living human beings. Isme long question bhi aa sakta hai. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. Ek aise insaan ko unhone taiyar kar diya tha jo ki apne pairon par khade hona janta tha aur India ko ab usne hi azad karana tha. Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. Ek pacifist the Mr. Charles Freer Andrews, jo ki Gandhi ke baad mein follower ho gaye the, wo unko farewell dene ke liye yani ki goodbye kehne ke liye aaye, क्योंकि उनको फिजी आइलैंड्स में भेज दिया गया था. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम. अब जो लॉयर्स थे वो सोचते थे कि अब क्योंकि ये ब्रिटिशर हैं तो अच्छा होगा कि ये गांधी के साथ रुक जाएं चंपारण में और उनको हेल्प करें. एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड, वो तैयार थे, बट गांधी वॉज वेहमेंटली अपोज्ड स्ट्रांगली. ही वॉज नॉट विलिंग to take help from Andrews. He said, yani Gandhi said, you think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. Wo puchne lage ki kyun hame ek Englishman ki zarurat hai, kyunki Gandhi kaam karte the self sufficiency pe. Unhone kaha this shows, agar hum inko rok lete hain Andrews ko, this shows the weakness of your heart, ki hum log kamzor hain isliye unki madad le rahe hain. The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. Hum sahi ke liye lad rahe hain aur hame khud par vishwas hona zaruri hai. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. Hame unko ek prop ki tarah, yani ki wo he'll be a helping hand, is tarah se unko use nahi karna chahiye. क्योंकि वो इंग्लिश मैन है इसलिए हम उनको यूज़ नहीं कर सकते, हमें खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है. ही हैड रेड आर माइंड्स करेक्टली, यहाँ पर जो ही है वो गांधी के लिए यूज़ किया गया है. राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स,
एंड वी हैड नो रिप्लाई. वो उन्होंने हमारे दिल को पढ़ लिया था उस टाइम पे जब एंड्रयूज को मना कर रहे थे और हमारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं था. गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस. सेल्फ सफिशिएंट होने के ऊपर ये चैप्टर है. सेल्फ रिलायंस गांधी ने सिखाई है और सेल्फ सफिशिएंट होना सिखाया है और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया है लोगों में. सेल्फ रिलायंस इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर. ये तीनों चीज़ें तीन अलग अलग चीज़ों के नाम नहीं है, ये तीनों एक ही चीज़ के नाम है क्योंकि इन्होंने जुड़कर आगे इन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने में हेल्प की. सो यहाँ पर द चैप्टर एंड्स. आपको एक क्वेश्चन आ जाता है, हाउ वॉज गांधी एबल टू इन्फ्लुएंस लॉयर्स. तो यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ है बुक में, बट यू कैन यूज़ अ फ्यू वर्ड्स. थ्रू हिज कन्विक्शन अर्नेस्टनेस एंड क्विक क्वेश्चनिंग. क्योंकि वो फटाफट से कटघरे में खड़ा कर देते थे लॉयर्स को भी, तो इसलिए वो अग्री कर गए. इसमें से क्वेश्चन आपको गुड क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर के ऊपर भी आ जाता है और गांधी की स्पेशलिटी के ऊपर, उनकी मैजिकल स्किल्स के ऊपर, उनकी मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है. तो गांधी के बारे में मैं कुछ बातें बताऊंगी. ही हैज़ अ मास अपील. लोगों को कन्विंस करने में बहुत ज़्यादा तेज़ थे वो. ही वॉज सिंसियर. ट्रू टू हिज वर्ड्स थे वो. एंड ही वॉज नॉलेजेबल. ध्यान से वो स्टडी भी करते थे अपने केसेस को. नाउ व्हाट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर. द थीम इज़ गांधीज वेज टू अपलिफ्ट फार्मर्स एंड मेक देम सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फ सफिशिएंट. कि गांधी ने कैसे शेयर क्रॉपर्स को अपलिफ्ट किया, नॉट ओनली इकोनॉमिकली एंड सोशली बट ऑल्सो कल्चरली एंड वन सेकेंड सोशली एंड मॉरली ऑल्सो. When I am reading the last line from page 55, that is about the theme of the chapter. Thoda tough language hai, but aap dekh lo. The leadership shown by Mahatma Gandhi to secure justice for oppressed people through convincing argumentation and negotiations. So that's all for the chapter. I hope you liked it and be prepared to read the next chapter with me. Goodbye. Ye chapter hai the last lesson. जिसमें कि हम स्टोरी पढ़ रहे हैं. एम हैमल जो हैं वो टीचर हैं. किस चीज़ के?
फ्रेंच
के टीचर हैं. पार्टिसिपल्स पढ़ाने उन्होंने और एक लड़का है जिसका नाम है फ्रांस, FRANZ. वो लड़का पढ़ना नहीं चाहता है लेकिन उसको बाहर की चीज़ें देखना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन वो अपने आप को रेजिस्ट करता है और वो अपने स्कूल पहुँच जाता है. जब वो स्कूल पहुँचता है, व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड. के आसपास क्राउड था. दो साल से हमें वहीं से बैड न्यूज़ मिलती थी बुलेटिन बोर्ड से. कौन सी बैड न्यूज़? लॉस्ट बैटल्स की, कि हम लड़ाई हार गए. ड्राफ्ट की, अब वो लोग हमारे ऊपर ऑर्डर चलाएंगे, इस तरह की न्यूज़. जब मैं जल्दी से वहाँ पहुँचा तो वहाँ पर ब्लैकस्मिथ था अपने अप्रेंटिस यानी कि ट्रेनी के साथ, जो कि बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था. उसने मुझे कहा, डोंट गो सो फास्ट बब. बब का मतलब बच्चा. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. पहुँच जाओगे तुम टाइम से. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. शायद मेरा मजाक उड़ा रहा था इसलिए मैं भागा भागा पहुंचा. आउट ऑफ ब्रेथ हो गया मैं,
थक गया.
हाँ, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वॉज अ ग्रेट बसल. बसल यानी
शोर
शराबा. जैसे कि जो कि जो शोर शराबा था वो गली के बाहर से ही सुनाई देता था. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क. लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन. यूनिसन मतलब एक साथ, जैसे सारे बच्चे बोलते हैं. वेरी लाउड with our hands over our ears to understand better. And the teacher's great ruler, teacher के जो ruler था, डंडे की भी आवाज़ मारने की आ रही थी table पर. आती थी, आ नहीं रही थी. But now it was also still. लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं थी आज के दिन में. आज के दिन में everything was so still, quiet and silent. I had counted on the commotion to get on my desk without being seen. मैं चाहता था कि बिना कोई मुझे देखे, कोई मुझे ना देख पाए और मैं अपने डेस्क पे पहुंच जाऊं. दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग. वो वाला दिन इस तरह का था जैसे कि संडे मॉर्निंग हो, जैसे कि स्कूल की छुट्टी हो. थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस. मैंने देखा मेरे क्लासमेट्स जो थे ऑलरेडी बैठे हुए थे. एम हेमल इधर से उधर चल रहे थे, अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म. I had to open the door and go in before everybody. मैं चुपचाप नहीं पहुंच पाया, मुझे सबके सामने चलकर
जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, कि मुझे शर्म भी आ रही थी और मैं डरा भी हुआ था कि अब मुझे पिटाई भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट नथिंग हैपन्ड। एम हेमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली, उन्होंने तो मुझे डांटा ही नहीं, बहुत काइंडली बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, बड़े प्यार से उन्होंने तो मुझसे बात की। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, हम तो शुरू ही करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क, बैठ गया मैं। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट हैज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। अब इसने अचानक से इसने नोटिस किया जो टीचर था ही वॉज वेयरिंग हिज फॉर्मल ड्रेस, उसने ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहना हुआ था, फ्रिल वाली उसकी स्लीव्स थी, शर्ट थी, कैप पहनी हुई थी सिल्क कलर की ब्लैक, सब कुछ एम्ब्रॉयडरी में था। उसने देखा कि इस तरह की ड्रेस वो इंस्पेक्शन पे पहनते थे या प्राइज डेज में, तो आज क्यों पहने हुए। बिसाइड्स यानी इसके अलावा द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, सीरियस था, मतलब सारा स्कूल में ना देर वॉज समथिंग सीरियस नज़र आ रहा था कुछ। बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट वॉज टू सी ऑन द ब्लैक सॉरी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो पीछे वाले बेंचेस थे वो हमेशा एम्प्टी रहते थे। उन बेंचेस में क्या था, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आर सेल्व्स, हमारे बच्चों की तरह, स्टूडेंट्स की तरह विलेज पीपल बैठे हुए थे। ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट एंड फॉर्मर मेयर द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स, एवरीबडी लुक्ड सैड, इतने सारे लोग जो खास लोग थे हमारे विलेज के वो सब बैठे हुए थे, एंड एवरीबडी लुक्ड सैड। And Hauser had brought an old primer, thumbed at the edges, and he held it open on his knees, with his great spectacles lying across the pages. While I was wondering about it, जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था कि ये हो क्या रहा है, everything is so unusual, M. Hemel mounted his chair and, in the same grave and gentle tone, देखो उनकी tone कैसी थी, grave and gentle, ये भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसने कहा सेम, जैसी उनकी थी वैसी ही टोन, कैसी,
ग्रेव एंड जेंटल,
विच ही हैड यूज्ड टू मी सेड, उन्होंने कहा माय चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू, आज मैं तुम्हें लास्ट लेसन दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से ऑर्डर आया था,
बर्लिन,
टू टीच ओनली जर्मन्स इन द स्कूल ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, जर्मन जो है वो सिर्फ एल्सेस और लॉरेन सिटीज में पढ़ाई जाएगी और कहीं पर भी नहीं पढ़ाई जाएगी,
नहीं कि जर्मन यहाँ पे भी पढ़ाई है।
एक मिनट पढ़ने दे, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स, जर्मन्स जीते हैं ना,
जर्मन नहीं,
अच्छा जर्मन्स को ही पढ़ाया जाएगा। देखो देखो, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन्स, जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन, यहाँ के स्कूलों में सिर्फ जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कल आ जाएंगे, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो ये जो तुम्हारा लेसन है द लास्ट लेसन, ये लास्ट कौन सा है, फ्रेंच, मैंने यहाँ पर लिख दिया। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि ये जो लास्ट लेसन है इसको तुम ध्यान से सुन लो, जैसे एग्जाम के लास्ट डे जो हमारा एग्जाम से पहले वाला दिन होता है उस दिन हम बड़े ध्यान से तैयारी करते हैं। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, थंडर क्लैप वाला क्वेश्चन आ जाता है वन मार्कर में, कि ये वाले जो वर्ड्स थे दे वर लाइक थंडर क्लैप, जैसे बहुत सारे लोगों ने ऐसे गड़ागड़ तालियां बजा दी हूँ,
नहीं
मतलब मेरे दिमाग पे उनका असर हुआ,
मतलब नहीं कि मतलब कि बहुत ही झटका,
हाँ झटका, वही तो थंडर क्लैप, कि मेरे दिमाग में एकदम झंझनाहट हो गई इनको सुन के, तो थंडर क्लैप वही होता ना कि बहुत, अगर हजारों लोग एक साथ तालियां बजा दें,
थंडर नहीं
क्लैप नहीं वो स्लैप होता है बुद्धू, ठीक है,
तो यार स्लैप ही तो लिखा है,
थंडर क्लैप लिखा है बेटा, थंडर क्लैप, तो इस ये वर्ड आ जाता है एक नंबर के क्वेश्चन, एक में ही आएंगे तुम्हें तो सारे। ओ द रेचेस दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल, अब इसको समझ में आ गया कि टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे क्या लिखा था, अब इसको समझ में आ गया। अब वो सोचने लगा, ये वैसे तो फ्रेंच पढ़ने में इंटरेस्टेड था नहीं, ये तो बाहर की चीज़ें देखने में इंटरेस्टेड था फ्रांस, लेकिन अब इसको लगा माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू
हाउ टू राइट, मुझे तो लिखना भी नहीं आता अभी। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब तो मैं सीख भी नहीं पाऊंगा, कहाँ से सीखूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर देन। ओ हाउ सॉरी आई वॉज नॉट फॉर लर्निंग, फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स। अब इसको बड़ा दुख हो रहा है, जैसे कहते हैं ना अब पछताए क्या होते हैं, जब चिड़िया चुग गई खेत। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स और गोइंग स्लाइडिंग इन द सार, अब वो सोच रहे मैं ये सब मज़े करता था, मुझे इन सब मज़ों के दुख हो रहे हैं क्योंकि मैंने पढ़ाई क्यों नहीं की। माई बुक्स दैट हैड सीम्ड सच अ न्यूजेंस अ वाइल अगो, जो कि मुझे सबसे ख़राब लगती थी किताबें, सो हैवी टू कैरी, जो कि मुझे बहुत भारी लगती थी। माई ग्रामर एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ दैट आई कुडंट गिव अप, मुझे लगा कि ये सारी चीज़ें जो मुझे अभी तक ख़राब लगती थी अब मैं इनको छोड़ना नहीं चाहता। एंड एम हैमल टू, और एम हैमल भी जो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं थे लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये तो बड़े अच्छे थे। द आइडिया दैट ही वॉज गोइंग अवे दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, अब जब मुझे ये समझ में आ रहा है कि अब मैं इनको दोबारा कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, कि अब मैं उनसे कि मतलब कितने इरिटेटिंग परेशान करते थे हमको, तो ये सारी चीज़ें मैं भूल गया, मुझे वो अच्छे लगने लग गए। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ्स, क्यों उन्होंने अपने अच्छे कपड़े पहने, फॉर्मल क्लोथ्स क्यों पहने, क्योंकि उनका लास्ट लेसन है। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम, कि अब वो लोग क्यों बैठे हुए, ओल्ड मैन जो इंपॉर्टेंट लोग थे, इट वॉज बिकॉज देवर सो सॉरी, देवर सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो लोग क्यों नहीं स्कूल गए, इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रेस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर्स नो मोर, ये कंट्री अब हार चुके थे वो लोग, तो अब वो उनकी कंट्री नहीं रही थी। वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, आई मतलब
फ्रेंड्स
FRANZ, आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, मेरे नाम की आवाज़ लगी, इट वॉज माई टर्न टू रिसाइट, वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल ऑफ द पार्ट फॉर द पार्टिसिपल ऑल थ्रू, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट मी वन मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं अच्छा पार्टिसिपल्स की बात हो रही थी ना, एक मिनट, पार्टिसिपल्स की बात वो बताना चाहता था लेकिन सब कुछ मिक्सड अप हो गया उसको, वो कुछ भी नहीं बता पाया। मैं वहाँ खड़ा रहा होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मैं ऊपर नहीं देख पा रहा था डर के मारे, डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। आई हर्ड एम हैमल से टू मी आई वोंट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, उन्होंने मुझे कहा कि नहीं डांटूंगा मैं तुम्हें, यू मस्ट फील बैड इनफ, सी हाउ इट इज़ एवरी डे वी हैव सेड टू आर सेल्व्स, बाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तेरी वाली बात है ना कि अभी तो बहुत टाइम बचा है। आई लर्न इट टमोरो, मैं कल याद कर लूँगा इसको, एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विद एल्सेज, शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टमोरो, नाउ दीज फेलोज आउट देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, हाउ इज़ इट यू प्रटेंड टू बी द फ्रेंचमैन एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, वो ये कहते हैं कि वैसे तो तुम फ्रेंचमैन हो लेकिन अब तुम्हें ये राइट ही नहीं है कि तुम अपनी अपनी खुद की लैंग्वेज को ना तो तुम बोल सकते हो ना ही तुम लिख सकते हो। आगे वो ये कहता है, बट यू आर नॉट ऑल द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रेंड्स, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू री अप्रोच आर सेल्व्स विद, हम सबके साथ ही हो रहे हैं, हम सभी बैड फील कर रहे हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंग्जियस इवन सॉरी इनफ टू हैव यू लर्न, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है कि उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, दे प्रेफर्ड टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, वो उन्होंने भी तो तुम्हें काम करने के लिए कहा कि जाओ काम कर लो पढ़ो मत, सो एज़ टू हैव अ लिटिल मोर मनी, ताकि थोड़ा और पैसा उनको मिल जाए, एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मेरी भी गलती है, ये आई कौन है, एम हैमल
HAMEL
हाँ मेरी भी गलती है, हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, अब ये कहते हैं मैं अभी तो तुम्हें कभी कभी पौधों में पानी डालने के लिए भेज देता था, इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, जब मैं फिशिंग करना चाहता था तो मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी थी, तो मेरी भी गलती है, तुम्हारे पेरेंट्स की भी गलती है. देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, अब वो बातों बातों में फ्रेंच की बात करते रहे, सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, अब उनको लगता था कि ये फ्रेंच जो है दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, क्लीन है, क्लियर है, दैट वी मस्ट गार्ड इट, हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए, हमारी मदर टंग है, अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, हमें इसको भूलना नहीं है, चाहे अब दुनिया में हमारे यहाँ बैन लग गया है कि फ्रेंच नहीं बोलनी, लेकिन हमें इसको बचाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. वो कह रहा है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है कि अगर किसी को हमने कैद कर लिया या किसी के ऊपर हमने जीत हासिल कर ली, लेकिन अगर उसकी लैंग्वेज उसके साथ है तो इसका मतलब उसके पास उस प्रिजन की चाबी है.
लेकिन ये क्या है, कैसे?
कि क्योंकि वो अपनी लैंग्वेज के सपोर्ट से वो उस प्रिजन से यानी कि जो उसकी आज़ादी छीन ली गई है वो उससे बाहर आ सकता है.
कैसे?
कैसे वैसे बाद में देखेंगे. देन ही ओपनड अ ग्रामर, अब क्या है, देन ही ओपनड अ ग्रामर, ग्रामर खोली उन्होंने, रेड अस आर लेसन, रेड मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, जब उन्होंने वो लेसन पढ़ा तो मुझे वो अंडरस्टैंड समझ आ रहा था. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सारी चीज़ें बहुत आसान लगी, सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आज मैं ध्यान से सुन रहा हूँ तो मुझे सारी चीज़ें कितनी आसान लग रही हैं, मैं ध्यान से सुनता ही नहीं था तो मुझे सारी चीज़ें बोरिंग और मुश्किल लगती थी. आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस,
लेकिन ये
अब हमें क्या लग रहा है कि आज वो भी ज़्यादा अच्छा समझा रहे हैं, पेशेंस के साथ समझा रहे हैं. इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर ही वॉज गोइंग अवे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये वन मार्कर में पूछा जा सकता है कि जैसे उसको जो कुछ भी आता था सर को वो सब कुछ आज अब हमें सब कुछ ही बता देना चाहते थे, जैसे मैं आज तुम्हें सब कुछ बता देना चाहती हूँ, एंड टू पुट इट ऑल इन टू योर आर हेड्स एट वन स्ट्रोक, ऐसे ही वो हमारे दिमाग में घुसा देना चाहते थे. ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन लिया, दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, हमारे लिए न्यू कॉपीज लाए थे, रिटन इन अ ब्यूटिफुल राउंड हैंड, राउंड हैंड मतलब हैंड राइटिंग, फ्रांस, उनके ऊपर फ्रांस लिखा हुआ था, एलसेस फ्रांस एलसेस ये लिखा हुआ था, फ्रांस एलसेस फ्रांस एलसेस ये लिखा हुआ था. दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आर डेस्क. You ought to have seen how very everyone set to work and how quiet it was. सब लोग काम कर रहे थे फिर भी बहुत शांति थी उस दिन स्कूल में. The only sound was the scratching of the pens over the paper. यही आवाज़ आ रही थी बस. ठीक है. Once some beetles flew in, कुछ beetles अंदर आ गई, but nobody paid any attention to them, not even the little ones who worked right on tracing their fish hooks. As if that was French. Two, on the roof the pigeons cooed very low. वहाँ मतलब कुछ कुछ distractions हैं लेकिन कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा. Pigeons भी बोल रहे थे धीरे धीरे. And I thought to myself, मेरे दिमाग में ये important विचार आया, ये विचार बड़ा important है कि significance है इस line का. Will they make them sing in German? क्या ये कबूतर भी अब German में ही गाएंगे? Even the pigeons, pigeons की बात कर रहे हैं. उसको ये लग रहा है जैसे हमें ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हैं ये लोग, हमें तो कर सकते हैं ज़बरदस्ती, क्या ये इन पिजन्स को भी ज़बरदस्ती कर सकते हैं? ये मतलब एक तरह के का कटाक्ष बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश का वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा अभी, सरकाज्म, सरकाज्म बोलते हैं, दूसरे को कटाक्ष करना, ऐसी बात बोलना. Whenever I looked up, whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, motionless बैठे हैं वो, कुछ हिलना डुलना नहीं कर रहे, and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind
जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। MML बैठे थे, कभी इस चीज़ को देख रहे थे, कभी उस चीज़ को। ऐसा लग रहा था क्योंकि ये उनका लास्ट डे है तो वो हर चीज़ की पोजीशन को अपने दिमाग में फिक्स कर लेना चाहते हैं कि मतलब ये मेमोरी उनको कभी भी ना भूले। तो ही वॉज लुकिंग एट एवरीथिंग विद सो मच ऑफ इंटरेस्ट। फैंसी
नहीं बल्कि
अब क्या है, फैंसी फॉर 40 years ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो। 40 साल से वो इस कमरे में काम कर रहे थे, बाहर गार्डन था उनका एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही थी। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ, द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, कि जो बेंचेस हैं वो अब थोड़े पुराने हो गए हैं, जो पेड़ हैं वो थोड़े बड़े हो गए हैं, अभी 40 साल हो गए करते करते तो बड़े हो गए हैं वॉलनट ट्रीज। एंड द हॉप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। जो हॉप वाइन उन्होंने लगाई थी, जो पौधा क्रीपर उन्होंने लगाया था, वो अब बड़ा हो गया है, यानी विंडो में इंटेंगल हो गया है, फिक्स हो गया है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इतनी मेहनत से उन्होंने ये सब कुछ किया, अब उसको छोड़कर जाना पड़ेगा, पुअर मैन। तो ये किसके लिए कह रहे हैं पुअर मैन?
मिस्टर हैमल,
एम हैमल बोलो हर बार। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री द नेक्स्ट डे, उनको अगले दिन जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में लेसन हुआ एंड देन बेबीज चैंटेड देयर बा बी बी बू बू बू। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, उन्होंने चश्मा पहन लिया एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन हिज बोथ हैंड स्पेल्ड द लेटर्स विद देम, वो भी बोल रहे हैं बच्चों के साथ। You could see that he too was crying, वो भी रो रहे थे, his voice trembled with emotion. ये ही कौन है? Mr. Hauser.
Hauser कौन है?
जो old man बैठे थे, villager पीछे बैठे थे primer लेकर।
Primer?
यही बताया इसमें। इनकी भी जो आवाज़ है वो trembling with emotion हो रही है and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनकी आवाज़ सुनकर, रोती सी आवाज़ सुनकर, वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था बिकॉज इट वॉज द लास्ट डे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट, द लास्ट लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, 12 बज गए, देन द एंजलस या एंगेलस, एंजलस होगा, एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आर विंडोज, उन लोगों के वापस आने की, ड्रिल से वापस आ रहे हैं प्रशियंस के, आवाज़ें आने लगी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, वेरी पेल मतलब वेरी सैड, डिसअपॉइंटेड, नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सॉ हिम, मुझे उतने मतलब वो बहुत डिसअपॉइंटेड थे तो ही आई सॉ हिम टू बी अ वेरी टॉल मैन, यानी कि मुझे वो बहुत इम्पॉर्टेंट, टॉल मीन्स इम्पॉर्टेंट, रिस्पेक्टफुल, है ना, मतलब मुझे लगा कि ये कितना अच्छा आदमी था और हमने कभी इनकी बातें सुनी नहीं। तो टॉल का मतलब यहाँ पे इज नॉट लंबा, इट इज रिस्पेक्टफुल और इम्पॉर्टेंट। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा, आई बोलते बोलते घबरा रहे हैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, आई
फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं,
जो लोग बैठे हैं सबको, बच्चों को, बड़ों को, सबको फ्रेंड्स बोल रहे हैं,
नहीं टीचर बोल रहे हैं,
हाँ आई, अब वो बोल नहीं पा रहे मारे घबराहट के, दुख के, बट समथिंग चोक्ड हिम, चोक हो गया उनका जो गला था वो बंद हो गया, ही कुड नॉट गो ऑन, बोल नहीं पाए, गो ऑन का मतलब कहीं जा नहीं रहे, बोल नहीं पाए। देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, ब्लैक बोर्ड पे गए, चॉक उठाया, बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत लगाई, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या लिखा था उन्होंने वो पूछ लेते हैं। विवे ला फ्रांस, अब क्या है कि तुम्हें जो ऑप्शन दी जा सकती है इसी के आसपास की दी जाएंगी तो तुम्हें स्पेलिंग्स पता होनी चाहिए, लिख कर देख लेना भाई, विवा में ए लिखा हो लास्ट में, क्या कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है, विवा ला फ्रांस का क्या मतलब है, लॉन्ग लिव फ्रांस, ये भी हमें पता होना चाहिए। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, दीवार के साथ सर लगा के खड़े हो गए, एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, बोल भी नहीं पा रहे थे वो मारे किस चीज़ के दुख के। स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो, उन्होंने इशारा ही किया, इस तरह से क्या होगा इशारा है ना जाने का,
नहीं उन्होंने बोला स्कूल
नहीं। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, जैसे कि उन्होंने ऐसे वाला इशारा किया होगा जाने वाला, तो उस जेस्चर का मतलब क्या था, स्कूल इज डिसमिस्ड यू मे गो। अब तुम्हें पूछा जा सकता है व्हाट वॉज द मीनिंग ऑफ द लास्ट जेस्चर ऑफ हैंड जेस्चर ऑफ एम हैमल, तो उसका मीनिंग है पढ़ लो,
schools are dismissed,
ए
school is dismissed, you may go।
हाँ ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर।